अब रुकू से बाद उठना इसको कोमा कहते हैं। तो रुकू से उठने के बाद की दुआएं, रुकू से सर उठाते हुए रफुल यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अगर आप इमाम हैं यानी दूसरों को जमात करा रहे हैं, या मुनफरिद हैं यानी अकेले पढ़ रहे हैं, तो रुकू से कौमे के लिए खड़े होते हुए ये दुआ पढ़िए, समय अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये सभी पढ़ते हैं आलमोस्ट। ये बुखारी की रिवायत है 790, और इसी तरह से मुस्लिम में 476 478 है। अगर मुक्तदी हैं यानी पीछे किसी के ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तैयिबम मुबारकन फी, ए हमारे रब तेरे ही वास्ते तारीफ है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ। हजरत रुफाया बिन राफे रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, जब आपने रुकू से सर उठाया तो फरमाया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, बस एक मुक्तदी यानी पीछे नमाज पढ़ने वाले फॉलोअर ने क्या कहा, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तैयिबम मुबारकन फी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, बोलने वाला कौन था, ये कलेमात किसने पढ़े हैं, एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल मैं था, आपने फरमाया कि मैंने 30 से जायद फरिश्ते देखे जो इन कलेमात का सवाब लिखने में जल्दी कर रहे थे, यानी आपने तारीफ फरमाई। मुराद ये कि अल्लाह के नबी के सामने अगर किसी साहबी ने कोई अच्छा अमल किया और आपने इस तरह कह दिया तो वो भी हमारे लिए हुज्जत है। ये बुखारी की रिवायत है 799, तो गोया क्या वो भी नमाज का हिस्सा होगी। एक और दुआ ले लीजिए, अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो कौमे में ये दुआ पढ़ते, समय अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मा बैनहुमा व मिल अमा शित मिन शैइन बादु, अल्लाह ने सुन ली उस बंदे की बात जिसने उसकी तारीफ की, ए अल्लाह ए हमारे परवरदिगार तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों के भराव के बराबर, ज़मीन के भराव के बराबर, दोनों के दरमियानी खला के भराव के बराबर, और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो इनके बाद तू चाहे। भराव समझते हैं, मिला भरना, फिल अप, यानी पूरी ज़मीन में जो चीज़ भर जाए, जो आसमानों में भरे, यानी टू मच, ये मुराद है। और ये मुस्लिम की रिवायत 476 और 478। आप अगर इसके तर्जमे पे गौर करते हुए पढ़ें ना, यकीन करें कि बंदे का दिल उस वक़्त जैसे अल्लाह की खशियत और उसकी बड़ाई से भरा होता है ना, ये सिर्फ वही बंदा तसव्वुर कर सकता है। अभी आपको दुआएं पढ़ाते हैं और आप इंशाल्लाह इनको आहिस्ते आहिस्ते याद करेंगे। एक और दुआ ले लीजिए, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते तो ये दुआ पढ़ते, रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति वल अर्दि व मिल अमा शित मिन शैइन बादु अहलस सनाई वल मजदि अहक्कु मा काल अल अब्दु व कुल्लुना लक अब्द اللهم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ذرا سے اس کے ترجمے پہ غور کیجیے، عقیدے کی اصلاح والا جملہ ہے اور پیاری سی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو ان کے بعد تو چاہے، اے تعریف اور بزرگی والے، بندے نے جو تیری تعریف और बुजुर्गी की इसका तो तू ही हकदार है और हम सब तेरे ही बंदे हैं, ए अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं वो चीज़ जो तूने ले ली और कोई देने वाला नहीं इस चीज़ को जो तूने रोक दी। सुकून आता है इसके बाद, सबर तहम्मल रिदा बिल कदा आती है कि नहीं आती, सारी फुर्तियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं इसके बाद कि मेरी चीज़ कोई नहीं ले सकता, जाओ भाग जाओ, और जो मुझे नहीं मिलनी वो नहीं मिलनी, और इस चीज़ को जो तूने रोक दी और दौलतमंद यानी साहिब नसीब को ये नसीब और दौलतमंदी तेरे हजूर कुछ नफ़ा नहीं दे सकती। बहुत प्यारी दुआ है, कुरान में दो तीन जगह यही मजमून है और अक्सर ये दुआ वहाँ कोट की जाती है कि जिसको इस पे यकीन आ गया ना उसकी ज़िंदगी के 90% मामले वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ये मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज थे 477। एक और दुआ लीजिए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल अस्समाई व मिल अल अर्दी व मिल अमा शित मिन शैइन बादु, अल्लाहुम्मा ताखिरनी बिसल्जी वल बरदी वल माइल बारिद, अल्लाहुम्मा ताखिरनी मिनज जुनूबी वल खताया कमा युनक्कस सौबुलवियदु मिनल वसख। ए अल्लाह, तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों के भराव के बराबर और ज़मीन के भराव के बराबर और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो इनके बाद तू चाहे। ए अल्लाह, मुझे बर्फ़, ओलों और ठंडे पानी के साथ पाक कर दे। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों और ख़ताओं से इस तरह पाक कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचेल से साफ़ किया जाता है। ये रिवायत है सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 204 और 476। अब ज़रा सी इतनी दुआएं और एक तरफ हम क्या करते हैं, 90% लोग कुछ भी नहीं पढ़ते। समय अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हुए तभी तो फौरन चले जाते हैं। ये जब हमने पीछे मसला डिस्कस किया है ना कि पूरा खड़े भी नहीं होते और सजदे में जाते हैं क्योंकि उधर पढ़ते ही कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोगों को कौमे का इल्म नहीं कि ये है क्या। तो वाजे रखिए कि रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाकर सीधे खड़े रहते और बड़े इत्मीनान से कौमे की दुआ पढ़ते थे। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और सजदा और दो सजदों के दरमियान बैठना और रुकू से उठकर कौमे में खड़ा होना बराबर होता। ज़रा सुनिएगा इस बात को, इसमें भी बहुत ही इस्लाह होने वाली चीज़ है। यानी चार चीज़ें, रुकू कितना लंबा, उतना ही सजदा, उतना ही जलसा और उतना कौमा। यानी जितनी देर रुकू में रहते, रुकू से खड़े होते तो कौमा उतनी ही देर खड़े होते, फिर सजदे में जाते जितनी देर सजदे में लगाते तो सजदे के बीच में दूसरे सजदे से पहले उतना ही बैठते स्वाय क़याम और तशहुद में बैठने के। ये बुखारी की रिवायत है 792। तो क्या सीखा कि नमाज में इत्मीनान होना चाहिए। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौमा बहुत लंबा होता था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लंबा कौमा करते कि हम ख्याल करते कि आप भूल गए। यानी अगर आज इमाम साहब बेचारे खड़े हो जाएं तो लोग खंखोरें और पता नहीं क्या हो गया, जल्दी करें, हमने जाना है, हमने पार्किंग का टिकट पे किया हुआ है और न जाने क्या कुछ। ये रिवायत जो थी ये 473 मुस्लिम की रिवायत थी। तो ऐसे इमाम हों जो कि नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़े। मगर अफसोस की बात है कि आज मुसलमान कौमा लंबा करना तो दरकुनार, पीठ सीधी करना भी गवारा नहीं करते, फौरन सजदा करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दें। चलिए अब आप यहाँ जो कौमे की दुआएं इसको मांगिए और चूंकि आपके लिए नहीं लगेंगी तो टेक्स्ट को सामने रख कर सुनिए।
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء.
मुझे उम्मीद है कि लफ्ज़ थोड़े से आपको मुश्किल लगे होंगे, और एक छोटी सी बात कि आप में से कोई किसी गिल्ट में ना चला जाए कि मैं तो ये सब पढ़ती नहीं, हाय मेरी नमाज तो क्या थी, कोई ज़रूरी नहीं। देखिए ये अपग्रेडिंग है, असल बेसिक नमाज आपकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ ये चेक कीजिए कि आप प्रोनाउंसिएशन में कुछ फ़र्क तो नहीं करते थे, तो थोड़ा भी पढ़ रहे लेकिन ठीक भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों कि आपकी नमाज कैसी, या अब आप स्ट्रेस में चली जाए इतनी दुआएं याद करनी है मैं कैसे करूं, कर लेंगे बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको याद नहीं होती तो इसका अभी से फिर एक तरीका भी दूं कि सुन्नत और नवाफिल में देख के पढ़ लीजिए आपके दिल की तसल्ली के लिए। तो लेकिन बहरहाल जो बेसिक नमाज है वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक जो हमारी आज की इस नशिस्त का होगा और अहम तरीन हिस्सा नमाज का, अभी तक जितनी बातें की हैं उनके बाद, और वो क्या है, सजदे के अहकामात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बईरु वल यदा यदैही क़ब्ला रुकबतैही। जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊँट की तरह ना बैठे बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों पर पहले रखे, यानी पहले हाथ घुटनों पर रखेंगे फिर, क्योंकि ऊँट दूसरी तरह बैठते हैं ना। ये मुस्लिम की रिवायत 473, सब समझ लीजिए फिर इंशाल्लाह अपने लफ्ज़ों में इसको देखेंगे। घुटने जाने से पहले हाथ जाने चाहिए, ये लिख ले बस पहली बात, ये एक सिंपल सी बात है। ऊँट आपको पता है कि उसके दो घुटने होते हैं तो वो ज़रा सा झूम झूम के बैठता है, मुराद ये है कि आप क्या करें, हाथ पहले रखेंगे ज़मीन पे फिर घुटने। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हदीस में एक बात है, और वो क्या, नाफे कहते हैं कि इब्ने उमर अपने हाथ घुटनों से पहले रखते और फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। ये इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है 627 और मुस्तदरक हाकिम 226 और हदीस नंबर 821 भी है। चलिए तीसरी हदीस लेते हैं। घुटनों से पहले हाथ रखने को इमाम ओज़ाई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और शेख मोहम्मद शाकिर रहमहुल्लाह वगैरह ने इख्तियार किया, और इब्ने अबू दाऊद ने भी कहा कि मेरा रुझान हदीस इब्ने उमर की तरफ है क्योंकि इस बारे में सहाबा और ताबईन से बहुत सी रिवायात मनकूल है। बात वाज़ेह, हाथ पहले रखने हैं घुटने बाद में। फिर अगली चीज़, सजदे में पेशानी यानी माथा और नाक ज़मीन पर टिकाएं। ये रिवायत है बुखारी की 812 और मुस्लिम में 490। सजदे में दोनों हाथ कंधों के बराबर रखिए, ये है अबू दाऊद 734 और इब्ने खुज़ैमा में 640। सारा एक्शन समझ लीजिए फिर इंशाल्लाह आप इसको विजुलाइज करेंगे। सजदे में दोनों हाथ कानों के बराबर रखना भी दुरुस्त है, यानी जहाँ कान होते हैं हाथ वहाँ आपके रहेंगे, तो कुदरती तौर पे फिर आपका मुंह हाथों के बीच में होगा, और ये अबू दाऊद की रिवायत 726 है और इब्ने हब्बान में 485 और तिर्मिजी में भी 271 पे आप इसी तरह की रिवायत देख सकते हैं। सजदे में दोनों हथेलियाँ यानी पाम और दोनों घुटने ज़मीन पर खूब टिकाएं, यानी ये नहीं कि कोने हाथों के लग रहे हैं लेकिन बीच से उठी भी है, इस तरह घुटने भी पूरे टिके, यानी पूरा जैसे टिकने की कैफियत जहन में रखिएगा सजदे के लिए। और ये रिवायत अबू दाऊद 859 थी और सही रिवायत है ये। फिर इसके बाद दोनों पाँव की उंगलियों के सिरे क़िबले की तरफ मुड़े हुए रखे और दोनों कदम भी खड़े रखे, जैसे हमने पीछे बात की थी ना, उन पाँव खड़े होंगे, उंगलियां नीचे से मुड़ी होंगी तो जाहिर है कि उनका रुख सजदे की तरफ होगा ना। और आप देखिए कि सिरे मुड़ने की हदीस अलग है और ये इसका रेफरेंस ले लीजिए बुखारी 828 और 689, और बाद में जो मुड़ने वाली बात है इसी में वो मुस्लिम के अल्फाज हैं 486। साहब ने एक एक एक्शन नोट किया हुआ है, ये नोट करने वाली बात है इस वक्त आपके लिए। सजदे में दोनों एड़ियों को मिलाएं, यानी जैसे नीचे से पांव सीधे ना तो ऊपर से टेढ़े करके वो एक पंखा सा ना बना ले, बल्कि क्या बनेगा, पांव बिल्कुल स्ट्रेट होंगे तो पीछे से एड़ियां भी मिलेंगी। ये भी गलती होती है, होता नहीं है अक्सर क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और ये रिवायत है सुनन अल कुबरा की, बहकी की रिवायत है या सजूद जिल्द नंबर 2116 और हदीस नंबर 2719 है और इब्ने खुज़ैमा ने 654 में इसको हसन कहा। इतने भी रेफरेंस काफ़ी हैं, वैसे बाकी भी आप बुक में से बाद में देख सकते हैं। सजदे में सीना, पेट और रानें ज़मीन से ऊंची रखें, पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें और दोनों रानें भी एक दूसरे से अलग अलग रखें। ठीक है, ये रिवायत है अबू दाऊद की 730, और सही रिवायत है, और 734 भी है, तिर्मिजी में भी 304 है, और सही दर्जे की रिवायत है, यानी साथ नहीं चिपकाना, यानी थोड़ी सी बीच में जगह रखिए। सजदे में कोहनियाँ यानी जो आपके एल्बोस होती हैं, ना तो ज़मीन पर टिकाएं और ना करवटों से मिलाएं, बल्कि ज़मीन से ऊंची, करवटों से अलग और कुशादा रखें। ठीक है, ये भी ले लीजिए हदीस बुखारी की 828। सजदे की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजू ज़मीन पर नहीं लगाते थे, बल्कि इन्हें उठाकर रखते और पहलुओं से दूर रखते, यहाँ तक कि पिछली तरफ से दोनों बगलों की सफेदी नज़र आ जाती। ये है बुखारी की रिवायत 807 और मुस्लिम में 497। अब आप देखिए, एक एक एक्शन पे जब अमल करेंगे तभी तो सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली का हक अदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 यानी 7 हड्डियों पर सजदा करूं। कौन कौन सी है नोट करिएगा, ये बहुत अहम रिवायत है। पेशानी, और ये ध्यान में रखिएगा कि पेशानी से मेरा तुम्हारा माथा और उसके साथ नीचे नोक, अगर आप स्कल खोलकर देखें किसी की दिखी हो आप, तो एक ही हड्डी होती है, यानी नाक की नोक भी लगेगी और माथा भी टिकेगा। कई लोग नाक नीचे नहीं लगाते और बस सिर्फ नाक भी लगा लेते हैं, नहीं पूरा माथा, और जब माथा नीचे टिकेगा तो नाक तो ज़ाहिर उससे पहले लगेगी क्योंकि उससे लंबा होता है। फिर सिर्फ दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियों पर, और ये कि हम नमाज में अपने बालों और कपड़ों को इकट्ठा ना करें। अब क्या पता चला कि 7 अज़ा पर सजदा होगा मुसलमान मर्द और औरत, और ज़मीन पर टिका कर इत्मीनान से सजदा करेंगे। और ये जो रिवायत हमने ली, ये कहाँ से ली है, इसका नंबर लिखिएगा, बुखारी 809, 812 और मुस्लिम में 490। ठीक है, अब इतनी बात से, इतनी बात ध्यान में रखिए, जैसे शुरू में भी बात हुई थी कि औरत और मर्द में कुछ हकूक और फराइज के मामले में कमी बेशी है, शरीयत सारी एक जैसी है, रोजे का तरीका, हज का तरीका और वला चीजें, नमाज में भी ड्रेस कोड के अलावा बाकी चीजें फर्क नहीं है। कुछ लोग सजदे पे आकर लोगों का सारा ही तरीका परख लेते हैं, तो औरतों की नमाज यानी अदायगी में मर्दों से क्या फर्क है ड्रेस कोड का? इसके बारे कुछ किताबों में लिखा होता है, लोगों का कसूर नहीं है, असल में वो बात पूरी समझ नहीं पाते। तो आइए देखिए कि औरतें कैसा सजदा करेंगी, बाजू नहीं बिछाएंगी, यानी वैसे ही करेंगी जैसे मर्द करते हैं। बहुत सी औरतें सजदे में बाजू बिछा लेती हैं, पेट को रानों से मिलाकर रखती हैं और दोनों कदम भी जमीन पर खड़े नहीं करती। वाजे हो कि ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सुन्नत पाक के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई मर्द जो औरत अपने बाजू सजदे में इस तरह ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। आपने पंजों का लफ्ज सुना होगा ना, जो कल्लाप होते हैं यानी शेर और इसी तरह कोई भी ऐसा जानवर, तो वो अपने पंजे नीचे बिछा के बैठता है, कहा ऐसे नहीं बैठो। और ये बुखारी की रिवायत है 822 और मुस्लिम में 493। इस हदीस को भी बहुत मिस कोट किया जाता है माजरत के साथ। अल्लाह के नबी के इस फरमान से क्या जाहिर है कि नमाजी चाहे मर्द हो या औरत, उसको अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर दोनों कोनियां जमीन से उठाकर रखनी चाहिए, पेट भी रानों से जुदा रहे और सीना भी जमीन से ऊंचा हो। अब अल्लाह के नबी ने जब ये बात कह दी कि सल्लू कमा रही तो उन्हीं उसल्ली, तो ये औरत और मर्द दोनों के लिए, तो सजदे में अपने हाथ जमीन पे नहीं रखने, कोनियों को बुलंद रखना है। ना बहुत मुबालगा कीजिए कि जिस्म खुल खुल जाए, और ना बिल्कुल ऐसे ही बिछें कि आप और भी प्रोमिनेंट हो जाएं। और ये जो रिवायत है सजदे में ज़मीन पे हाथ ना रखने वाली, ये मुस्लिम की रिवायत है 494। अच्छा, बाज़ लोग क्या कहते हैं, हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग कहते हैं औरत सजदा करेगी नीचा मर्द ऊंचा, यानी मसला मशहूर है ऊंचा सजदा के नीचा सजदा। और क्या कहते हैं कि देखें जी औरत सजदे में होती है तो उसका जिस्म जब वो ज़मीन से बुलंद होता है बेपर्दगी होती है। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने औरत के लिए ओढ़नी लाजिम करार दी, ये ओढ़नी दौराने सजदे में भी पर्दे का तकाजा पूरा करती है। आज आप में से मेरे में से कोई भी सहाबियात की गैरत और शर्मो हया को नहीं पहुंच सकता, जब उन्होंने हमेशा सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की, तो आज की खातून को भी इन्हीं की राह अख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह के नबी जब सजदा करते तो इतनी गुंजाइश रखते थे कि बकरी का बच्चा आपकी दोनों बाहों के नीचे से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था। ये रिवायत ले लीजिए मुस्लिम 496। थाइस होती है ना आगे से जो रान वाला हिस्सा है, इसको और पेट को अलग होना चाहिए। अब ये अलग बात है पेट इतना बड़ा है, लेकिन जोड़ना नहीं, चिपकाना नहीं, अलग रखना है। पता क्या चला इस सारी बात से कि सजदे का एक पूरा तरीका है, कोनिया ऊपर रखेंगे तो बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात है, यानी दो चीजें नोट कर लें सजदे में कि थाइस को पेट से अलग रखना है और कोनिया जमीन पे नहीं लगानी, कुदरती तौर पे सजदा ठीक हो जाएगा। और सजदा के कुर्बे इलाही का बायस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया, दरअसल बंदा सजदे की हालत में अपने रब से बहुत नजदीक होता है, लिहाजा सजदे में बहुत दुआ करो। ये मुस्लिम की रिवायत है 482। ये महसूस कीजिए, इस कुर्ब की बात कीजिए, वस्जुद वक्तरिब। तो नमाज बंदे को अल्लाह तआला से मिलाती है। जहां तक सजदे में दुआ मांगने का ताल्लुक है, इसका मुख्तार तरीका क्या है कि फर्ज नमाज में वही दुआएं मांगी जाएं जो सजदे के मुतल्लिक मकबूल अहादीस में वारिद हैं, और अगर सुन्नत या नवाफिल अदा किए जा रहे हैं तो दीगर मसनून दुआएं भी मांगी जा सकती हैं। और अगर कोई शख्स नमाज के बगैर सिर्फ सजदा कर रहा है, यानी ऐसे ही सजदे की कैफियत में चले गए, तो जो चाहे मांगे, ख्वा अरबी जुबान में या उर्दू जुबान में। चूंकि अल्लाह ताला बंदे से हर हाल में नज़दीक है, लेकिन सजदे की हालत में ज़रा आजजी और बेबसी है तो बंदा अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। वैसे भी तो सजदे में कोई और दिखता ही नहीं है, रुकू तक में भी कुछ ना कुछ इर्द गिर्द की होश होती है, खड़े हुए तो माशाल्लाह लोग ऊपर पंखा गिन रहे होते हैं और टाइलों को देख रहे होते हैं, लेकिन सजदे में तो कुछ नहीं दिखता। तो लिहाजा नबी सल्लम जो रहमत आलम थे, सजदे में बड़ी आजजी और इखलास से दुआएं मांगते थे। और ये भी याद रखिएगा कि आमतौर पर जमीन पर सजदा करते थे क्योंकि मस्जिद नबी में फर्श नहीं था। सहाबा किराम सख्त गर्मी में नमाज अदा करते और जमीन की गर्मी की वजह से अगर वो जमीन पर पेशानी ना रख सकते तो सजदे की जगह पर कपड़ा रख लेते और इस पे सजदा करते। यह भी मुस्लिम की रिवायत है 620। आज हम जरा अपनी जगहों को देखें, हमारी नमाजें और हमारी नमाजों की जो कैफियत है, आप देखिए कि उसमें क्या हमारे पास नेमतें हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम नेमतों में डूबे हुए, सर से पांव तक डूबे हुए, लेकिन अमूमन लोग नेमतों की कदर नहीं करते। सजदे में अपने आप को इस तरीके से महसूस कीजिए कि मैं हूँ छोटी सी चुंटी, और या कनाबुदो या कनस्तीन, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और मैं सबसे छोटी हूँ। और ये बहसें जो है ना, इनको छोड़ दीजिए, आपके सामने सारी हदीसें हैं, रेफरेंस है, इस बुक को जितना कॉमन कर सकते हैं करें। इन बातों को इल्म की बुनियाद पे आम करें, जुबान की बुनियाद पे ना करें। अमूमन आप देखिए कि लोग ये गलतियाँ करते हैं सजदे में, औरतें बाजू बिछा लेती हैं, पेट को रानों से मिलाती हैं, दोनों कदम भी जमीन पर खड़े नहीं होते। तो इनको दूर कर दीजिए, इतनी बड़ी बातें नहीं है कि आप इसकी वजह से परेशान हो। और बस वो कहते हैं ये कुत्ते की मिसाल क्यों है, तो यही कहा है ना कि वैसे ना हो। देखिए अगर कुत्ता पाँव हिलाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन एक इंसान के लिए तो ये चीजें समझने और गौर व फिक्र किए। तो बहरहाल ये सारी बात में जो बात का एंड अप खुलासा है, हमने इसमें क्या सीखा, पहले तो आज हमने रफुल जदायन के तरीके और इसके हक में सही दलाइल देखे, फिर ना करने वालों के दलाइल और उसका तजिया देखा, फिर रुकू और कौमे की मुख्तलिफ दुआएं सीखी, सजदा करने का सही तरीका सीखा है, फिर इसी तरह इत्मीनान और सुकून नमाज का लाजमी हिस्सा इसको देखा, और खवातीन की सजदा करते हुए गलतियां। इतने थोड़े से वक्त में इतना कुछ पता लग गया आपको मुझे, बस ये देख लीजिए। अगर आपने बैठ के सुना है, बुक खोल कर सुना है या नोट्स लिए हैं, तो याद रखिएगा कि फिर आपने बहुत कुछ पा लिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें और इधर उधर सारा दिन चलने फिरने से बेहतर है कि अगर आप सुकून के साथ एक बात सुन लें और उसको अपने अमल में रखें। और आपको पता है कि रमजान मुबारक की 21वीं रात थी, बारिश हुई, मस्जिद की छत टपक पड़ी और आपने कीचड़ में सजदा किया और आपकी पेशानी और नाक पर कीचड़ का निशान था। जी, ये बुखारी के लफ्ज हैं 813 और मुस्लिम 1167 है। इसी तरह से आपने एक दफा बड़ी चटाई पर नमाज अदा की जो ज्यादा अरसा इस्तेमाल में रहने की वजह से स्याह हो चुकी थी, यानी चटाई भी पूरी सही नहीं होती थी। ये बुखारी की रिवायत है 380 और मुस्लिम में 658। तो सारी बात जो अभी आज जहाँ तक सीखी, उसका खुलासा क्या है कि जितना नमाज की रूह पे रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा सीखेंगे। तो अल्लाह करे कि हमारी नमाजें जिंदा हो जाएं। जजाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।